وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى, और जब तुमने कहा ए मूसा, लन नूमिना लका हत्ता नर अल्लाह जहरतन, हम तो नहीं मान लाएंगे जब तक हम अल्लाह को ना देख लें सामने. ये कब हुआ? अच्छा, अब उसके बाद ना मूसा अलैहि सलाम लेकर चले अपनी कौम के जो बेस्ट 70 पीपल थे ना, जो बहुत बहुत नेक साले थे, उनको मूसा अलैहि सलाम टूर पे लेके चले. उन्होंने कहा मैं लेके जाता हूँ, तुम वहां पे अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह ताला हमें पाक करे, और ये जो सारा कुछ हुआ है बस अल्लाह ताला के सामने रो गिड़गड़ाओ. तो ये जो बछड़ा पूजने का हुआ, तो उनको लेकर चले कोहेतूर पर और उनसे कहा कि तुम तौबा करो, रोजा रखो, पाक साफ हो जाओ, जो भी उनको कहे चीजें. तो उन्होंने कहा ए अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह से दुआ करें कि वो अपना कलाम हमें भी सुनाए. जब मूसा अलैहि सलाम पहाड़ पे पहुंचे तो एक बादल ने आकर सारे पहाड़ को ढांक लिया और वो इसके अंदर चले गए. जब अल्लाह ताला ने कलाम शुरू किया तब मूसा अलैहि सलाम की पेशानी पर नूर आ गया, ऐसा नूर कि उनकी तरफ कोई देख नहीं सकता था, और बादल की ओट हो गई और ये सब लोग सजदे में गिर पड़े. और मूसा अलैहि सलाम की दुआ से जो ये साथी जिनको लाए थे 70 जो लोग थे, बुजुर्ग थे, ये भी अल्लाह का कलाम सुनने लगे. और जो अल्लाह ताला ने अहकामात देने थे जब वो दे दिए और कलाम खत्म हुआ, बादल छट गए, मूसा अलैहि सलाम इनके पास आए, तो ये कहने लगे मूसा हम तो आप पे ईमान नहीं लाएंगे जब तक आप अल्लाह ताला को हमें सामने ना दिखा दें. इतनी बड़ी बात, इतनी गुस्ताखी की बात. हालांकि मूसा अलैहि सलाम पर ईमान लाए, में पैगंबर उनको समझते हैं, लेकिन अब क्या हम नहीं आपके ऊपर ईमान लाते कि ये बातें सारी अल्लाह की तरफ से, हमें बस दिखाएं कि अल्लाह सामने हमारे आए, फिर हम उसको देखें तो फिर हम मानेंगे. अब इसके ऊपर क्या हुआ, फअखजत कुमुसायका, तो फिर पकड़ लिया तुमको कड़क ने, कड़का आया और सारे के सारे मर गए. मान तुम तंजरून, और तुम देख रहे थे कि ऐसे कड़का आ रहा है. अब कितनी एक बड़ी मुश्किल हो गई मूसा अलैहि सलाम के लिए कि आ जाके बताएंगे अपनी कौम को कि वो कहां गए 70 लोग. वो कहेंगे आप उनको किधर छोड़ के आ गए, क्या उनको मार आए हैं, क्या कर रहे हैं उनके साथ, हमारे इतने बड़े बुजुर्ग, इतने नेक लोग हमारे कहां चले गए. तो मूसा अलैहि सलाम ने तो रोना दुहाइयां देना शुरू कर दिया, अल्लाह से दुआएं करना शुरू कर दिया, या अल्लाह ये अगर तूने मारना ही था तो हम सबको इससे पहले ही मार देता, अल्लाह बेवकूफों के काम पे हम सबको हलाक ना कर, ये तो उनके चीदा जीदा पसंदीदा लोग थे, जब मैं अकेला जाऊंगा वापस तो उनको क्या जवाब दूंगा, कौन मेरी बात को सच्चा समझेगा, कौन मुझ पे उसके बाद ईमान लाएगा. अल्लाह तो तौबा कबूल कर ले, अल्लाह ताला तू माफ कर दे. अल्लाह ताला ने अपना फज़ल व करम किया, थुम्मा बअसनाकुम मिन बादी मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, फिर उठाया हमने तुमको मिन बादी मौतिकुम, तुम्हारी मौत के बाद, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो. ये अल्लाह ताला की आदत नहीं है कि अल्लाह ताला कभी जो मर जाए एक दफा उसको दोबारा जिंदा करे. लेकिन इस सूरत में आप एक ये पहला वाक्या देख रहे हैं ना, इसको नोट करें, इसके बाद भी आप देखेंगे कि कौन कौन था जिसको अल्लाह ताला ने मरने के बाद जिंदा किया. इस सूरत के अंदर आएंगे वो वाकयात. तो ये पहला आपने आज नोट कर लिया. तो हमने उठाया उनको उनकी मौत के बाद, इसके ऊपर भी क्या जरूरी है, शुक्र अदा किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होता लेकिन अल्लाह ने खास अपना फजलो करम किया, अल्लाह ताला का खास एहसान हुआ. तो ये भी हमें यहां से पता चला कि वो लोग, आप सोचिए जो अभी अभी कत्लो गारत करके एक दूसरे को अब चैन से बैठे हैं, अब मूसा अलैहि सलाम जैसे होता ना कि एक ठीक है अल्लाह ने माफ तो कर दिया, लेकिन अल्लाह के सामने एक अपनी आजी के लिए, अपनी आगे ह्यूमिलिटी शो करने के लिए अब उनको लेकर गए कि अल्लाह ताला तू माफ कर दे. हम इंसान जब एक कोई गलत काम कर लेता तो उसके बाद बार बार कहता ना अल्लाह से कि अल्लाह तू माफ कर दे, मैंने बड़ा गलत किया. अब उनको लेकर गए, उनका हाल क्या है, अभी ये कत्लोगारत हुआ था, वहां जाके फिर कहने शुरू हुए, उल्टी सीधी बात करना शुरू हुई. इससे पता चलता है, देखिए एक तरफ इतना ईमान कि एक दूसरे को कत्ल करने पे भी खड़े हो गए, दूसरी तरफ ये ईमान की कमजोरी कि कहा कि अल्लाह को हमें दिखाओ. इससे पता चलता है ईमान कितना फ्लक्चुएट करता है ना, कभी इतना नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसे रहता है ईमान. तो इंसान को डरना चाहिए, अगर आज ईमान मजबूत है तो ये नहीं जरूरी कि कल भी ऐसा ही रहे, कल को क्या हालात होते हैं, क्या होता है कुछ नहीं पता। तो हमेशा इस चीज से केयरफुल रहना चाहिए कि अल्लाह कहीं हमारा ईमान ना कमजोर हो जाए। अपने ईमान को बूस्टअप करने के लिए हमेशा कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि ईमान खुद ब खुद नहीं बूस्टेड रहता, आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी। आप ऐसी मजलिसों में बैठे हैं, आप ऐसी चीजें सुने, ऐसे लोगों की बात सुने, या कुरान को पढ़ें, या इसकी तफासीर पढ़ें, या हदीस पढ़ें, ये उलूम लें, इससे ईमान बूस्ट होता है। कोई अच्छा लेक्चर सुने उससे ईमान बूस्ट होता है, नेकों की सोबत इख्तियार करें उससे ईमान बूस्ट होता है। तो ईमान को भी बूस्ट अप करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए इंसान को कोशिश करनी पड़ती है, वरना ईमान फेड होने लगता है, ईमान कमजोर होने लगता है। देखें आप यहाँ पे उनका ईमान कितना, क्या ईमान की हालत हो गई। दूसरी हमें क्या बात पता चलती है, एक और बात समझ में आती है, एक ये कि मूसा अलैहि सलाम ने भी कहा था अल्लाह मैंने तुझे देखना है, उनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने जब कहा अल्लाह को हमें दिखाओ सामने, तो इनके साथ ऐसा हो गया। क्या फर्क है, आपको कुछ समझ आता है क्या फर्क है? दोनों ने एक सवाल किया ना, इनका भी सवाल था कि हमने अल्लाह को देखना, मूसा अलैहि सलाम का भी सवाल था, वो बात किसी और टाइम का, इस वक्त का नहीं है, लेकिन था ना, उनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ। फर्क ये है, सवाल सवाल में भी फर्क होता है ना। मूसा अलैहि सलाम ने जब सवाल किया था, तो उनका सवाल शौक और मोहब्बत की वजह से था, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, और इनका किस लिए, हम नहीं तुझे मानेंगे है मूसा, हम जब तक हमें अल्लाह ना दिखा दे तो हमने नहीं मानना। तो सवाल अगर एतराज की सूरत में है, सवाल इसलिए नहीं कि हमने कुछ समझना है, या हमें कोई शौक है, या हमें कोई मोहब्बत है, बल्कि बस अपनी अकड़ के अंदर, और शक है हमें, हम नहीं मानते, हमें प्रूफ चाहिए। तो हमें सामने आए ना अल्लाह ताला और हमें दिखाए, तो फिर अपना आप पहले दिखाए, फिर हमसे हमें दे ये सारे अहकामात, तो तब हम मानेंगे। अब आप उठा के ले आए ये अहकामात, हम तो नहीं इनको मानते, लन नो में ना लगा कि ये अल्लाह की तरफ से ही है। अब आप देखें, हालांकि उनको पता है कि ये पैगंबर है अल्लाह के और इनके पास वही आती है, फिर भी कहते अब हमने नहीं मानना, हमें अल्लाह दिखा। वहां पहुंच के कुछ और ही उनके तौर तरीके हो गए। तो हमें पता चलता है कि जब हम सवाल करते हैं ना, तो सवाल में इतराज नहीं होना चाहिए, शकूक ऐसे नहीं होने चाहिए कि अल्लाह के ऊपर ही कोई बातें बना रहे हैं, सोच समझ के सवालात करने चाहिए। बाज लोगों के सवालों में आजी नहीं होती, वो अल्लाह ने ऐसे क्यों किया, अल्लाह ने ये क्यों कहा, अल्लाह ने ये क्या बात हुई भला, ये तो बड़ा जुल्म है, फिर इस तरह सोच रहे होते हैं ये किसके बारे में कह रहे हैं, या ऐसे ही बोले जाते हैं कि भाई जो मर्जी अल्लाह ताला के बारे में बात करते जाओ, हाँ जो मुंह में आए बोल दो। इस बात को तो बोल्डनेस समझा जाता है ना, आप कि सोचना नहीं है, बस कुछ भी कह दो अल्लाह के बारे में, अल्लाह ने आप कौन सा आके पूछा है। उससे ज्यादा हम लोगों से डरते हैं, किसी बंदे की बात करनी हो ना उससे फिर भी डरते हैं कि इसके सामने ना बात करो, मेरा गिरेबान ही पकड़ लेगा, अल्लाह से नहीं डरते। उसके बारे में ऐसी बातें करते रहते हैं, ये सोचते नहीं अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह देख रहा है। और इतराज कितने हैं हमारे, आप इतराज करके दिखाएं ना जरा, किसी कोई आपके सामने कोई बड़ा हो उसके खुद के, तुम तो बड़े ऐसे हो, तुम तो बड़े, तुमने क्या किया हुआ, ये क्या, फिर तो देखते हैं वो आपका क्या करता है। उस वक्त डरते हैं, नहीं, वो तो जेल करा देगा, वो तो ऐसे हो जाएगा, फिर वो ऐसे उठवा लेंगे, पता भी नहीं चलेगा वो, नहीं, कुछ ना बोलो, फोन पे भी बात करते हुए डरते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के बारे में बात करते भी नहीं डरते, इससे पता चलता है ना कि ईमान की क्या हालत है, किससे डरना चाहिए और किससे डरते हैं हम। तो पता चला कि ऐसी बातें मुंह से निकालना जो अल्लाह के ऊपर कोई एतराज हो, या ऐसी चीजों वो नहीं करनी चाहिए। अच्छा एक बात पिछली उसमें रह गई, वो भी उसमें जरा लिख लें, आयत 54 में, जहां पे मैंने आपको बताया था ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन द बारिकुम, ये हुक्म बहुत मुश्किल था ना, एक दूसरे को कत्ल करो, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया वो खैर है। इसे हमें अपने अमल के लिए क्या मिलता है, कि बाज हुक्म हमें भी मुश्किल लगते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन द बारिकुम, इसमें खैर है तुम्हारे लिए, यहां से पता चला ना, वो हुक्म भी इंतहाई मुश्किल था, आसान नहीं था। कत्ल करो अपने ही लोगों को, अपने ही खानदानों को, अपने ही कबीले को, तो कितना मुश्किल है। उसके बाद जब अंधेरा दूर हुआ होगा तो पता चला होगा कि किसका कौन पड़ा हुआ जमीन पे, तो मुश्किल था ना, लेकिन इसमें खैर थी। हम क्यों नहीं ये अकीदा रखते कि जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मेरी तबीयत पर जितना भी भारी क्यों ना हो कोई अल्लाह का हुक्म, इसमें खैर है। जब इस कत्ल करने में खैर हो सकती है, तो हमारे तो कोई ऐसी चीजें नहीं है जो जिन अहकाम को हम मुश्किल समझते हैं, बहुत बड़ा बोझ पत्थर समझते हैं अपने ऊपर, वो तो कोई मुश्किल ऐसे नहीं है जितना ये मुश्किल था। लेकिन अल्लाह ने जब इसमें फरमाया खैर है, तो सब में खैर है। वदल्लल्ला अलैकुमुल गमामा, और हमने साया किया ऊपर तुम्हारे बादलों का। अब जब ये उस मैदान में थे, अब ये भी समझ लें कि ये लोग फिर गए, अल्लाह ताला ने इनको वहां पे शाम में एंटर करना था, तो जब ये वहां पे पहुंचे तो इनसे कहा गया कि आप चलो जाके लड़ो उनसे। हिमालिका एक कौम थी वहां पे रहती थी, जाहिर वहां पे खाली तो नहीं होंगे घर के जाके घुस जाएंगे किसी मुल्क में, वहां पे एक कौम थी ना, अब रह वो वहां पे बसती थी, अब इनका थोड़ी था वो कंट्री, तो अब उसको भी तो जाके इनको लेना था फलस्तीन को। तो अब ये कहने लगे कि हम तो नहीं लड़ सकते, मूसा तुम जाओ और तुम्हारा रब जाके लड़े, हम हमसे नहीं लड़ा जाता। तो अल्लाह ताला ने इनको फिर ये सजा दी कि बस ये इसी मैदाने ती में, ती असल में जो लफ्ज है ना, ता या हा, जो हलवे वाली हा नहीं दूसरी, ये जो लफ्ज है इसका मतलब ही है सरगर्दा रहना, लॉस्ट रहना। तो ये बस घूमते रहे उस मैदान के अंदर, घूमते रहे, इतना उसी में लॉस्ट हो गए कि सुबह को जहां से चलते थे शाम को देखते थे वहीं पे होते थे। इससे पता चला कि बिल्कुल उनको कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं रही थी कि अब तुमने ये कहा ना, ठीक है हमने नहीं एंटर होना, हमने हमसे नहीं लड़ा जाता, हम नहीं ऐसे कर सकते, तो फिर ठीक है। यहाँ पे ती का माना परेशानी का भी है, परेशान रहे कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। 40 ईयर्स तक ऐसा हुआ, 40 ईयर्स, इमेजिन कर सकते हैं आप, 40 साल आसान है कोई? और वहां पे कोई ऐसा नहीं था कि कोई शॉप्स हैं, कोई मार्केट है, कोई कुछ है, कोई ऐसा नहीं था, वो खुला एक मैदान था ना, वहां पे कोई इमारतें थी, और ये चलते जा रहे हैं। लेकिन इनकी इस नाफरमानी के बावजूद और इतनी बदतमीजी के बावजूद, फ़ذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون, जाओ मूसा तुम और तुम्हारा रब जाके लड़ो, हम यहाँ पे बैठे हैं। इतनी बदतमीजी के बावजूद अल्लाह ताला ने इनके ऊपर गमाम का साया किया कि बादल इनके ऊपर रहे, क्योंकि उन्होंने कहा था हम धूप में कैसे चलते रहे। وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, और इनके ऊपर मन और सलवा नाजिल किया। अब वहां पे क्या करते, खेती बाड़ी करते, क्या करते वहां पे, काम कारोबार था नहीं, अल्लाह ताला ने इनके लिए मन और सलवा उतारा। मन ना छोटी छोटी ड्रॉप्स थे, जैसे आप समझे मोती की तरह, जैसे कोई चीज हो, या ओले की तरह, तो वो आसमान से उतरते थे, और वाइट बिल्कुल दूध की तरह, और मीठे जैसे हनी होता है, और सलवा जो बटेर से थे, एक छोटे छोटे परिंदे थे, उनके झुंड के झुंड आते थे और इतनी आसानी से उनको पकड़ लेते थे। कोई शिकार नहीं करना, कोई शिकार के पीछे भागना नहीं है, कोई कुछ ऐसी चीज नहीं थी, वो पकड़ लेते थे। और पूरे दिन के लिए ये खाना उनके लिए काफी होता था और होलसम था। अब देखें ऐसे परिंदों का गोश्त तो लजीज भी बहुत होता है, लोग बाकायदा इनके लिए शिकार करते हैं और बहुत रेयर होते हैं ये, तो ये इनको फ्री मिल रहे थे और बगैर मुशक्कत के। यानी कोई ऐसा नहीं था कि उनको जाना पड़ता, कहीं ढूंढना पड़ता अपना रिस्क, कहीं कमाइयां करनी पड़ती, कुछ नहीं, वहीं के वहीं उनको लाके जिस जिस जगह पे वो होते थे, और उस दिन का मिलता था। अगर वो स्टोर करके रखना चाहते थे तो खराब हो जाता था, लेकिन पूरा दिन ठीक रहता था, अगले दिन और आ जाता था। तो अल्लाह ताला की तरफ से कितनी मेहरबानी थी, कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम, खाओ पाकीज़ा में से जो जो हमने रिस्क दिया, पाकीज़ा चीजें खाओ जो हमने तुम्हें रिस्क दिया। वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, और हमने इनके ऊपर जुल्म नहीं किया बल्कि इन्होंने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया। ये क्या से जुल्म करते थे, मैंने जैसे आपको बताया कि स्टोर करके रख लेते थे, वही कि अल्लाह के ऊपर कोई तवक्कुल नहीं है, वो अल्लाह जो हर रोज दे रहा है वो कल भी देगा ना। लेकिन इनको कहा गया था तुमने जमा नहीं करना, मगर ये फिर भी चोरी छुपे उसको जमा करते थे, फिर रिस्क को भी अपनी तरफ मंसूब करते थे कि ये हमारा ही कोई कमाल है, अल्लाह की देन नहीं समझते थे। और तय्यब क्या है, जिसकी सोर्स भी तय्यब है, सोर्स ऑफ इनकम भी तय्यब है, वो खुद चीज भी तय्यब है, यानी अल्लाह ताला ने इजाजत दी भी है खाओ पियो, सोर्स भी तय्यब है और वो चीज भी तय्यब है, ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी थी। और फिर जब ये 40 ईयर्स तक वहां पे घूमते रहे ना, देखिए साया भी इनके लिए कैसा शेड था, अगर धूप के अंदर चलना पड़ता तो कितना मुश्किल होता, तो जहां जहां जाते थे साया रहता था इनके साथ। एक और बात हमें समझ आती है कि जब भी इंसान कोई गलत काम करता है ना, तो वमा जलमूना, अल्लाह की तरफ ना कहो कि अल्लाह ने मेरे ऊपर कोई वो किया, अल्लाह ताला फरमाते वमा जलमूना, हमने नहीं जुल्म किया, हमने, लेकिन ये लो इंसान अपने आप पे खुद जुल्म करता है। आप ये देखें यहाँ पे एक पीछे आयत में, यहाँ पे जो 55 आयत में है, फअखदत कुमुसाय का तो आया, पकड़ लिया तुमको कड़क ने, जबकि हम पीछे सारी जगह देख रहे हैं ना कि जैसे बाथ ना कुम जल अनजल ना अलैकुम जल ना, यानी अल्लाह ताला अपनी निस्बत कर रहे हैं ये सारी चीजें जो एहसानात है ना, अफाउ ना, तो यहाँ पे भी कैसा कहा जा सकता था, अखद ना कुम, हमने पकड़ा तुमको सायका के साथ, लेकिन अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया, साय कड़क ने पकड़ लिया तुमको, अपनी तरफ क्यों नहीं निस्बत की, इसलिए कि जो कड़क के साथ मर जाना था वो एक बुरी चीज थी ना। हर एक चीज अल्लाह ही की तरफ से होती है, हर काम अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन बुराई की निस्बत अल्लाह की तरफ करना ये अदब के खिलाफ है। याद है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब नियमतों का जिक्र किया तो सब नियमतों का अल्लाह की तरफ जिक्र किया, लेकिन जब बीमारी का कहा तो फरमाया जब मैं बीमार होता हूं फहुआ यशफीनी, तो वो मुझे शिफा देता है, शिफा देता है अल्लाह मुझे, लेकिन बीमारी का नहीं कहा, जब अल्लाह मुझे बीमार करता है तो जो मुसीबत है जो चीज है इसकी निस्बत अगर अल्लाह की तरफ की जाती तो क्या होता, लेकिन जो भी मुसीबत होती है उसके देने वाले को फिर इंसान पसंद नहीं करता, उसे बदगुमान हो जाता, अल्लाह ने अपनी तरफ से नहीं निस्बत की, क्योंकि इंसान की अपने करतूत होते हैं ना जिनकी वजह से उसके ऊपर मुसीबत आती। अब जब ये 40 साल गुजर गए और इनके पुराने लोग सारे जो फौत हो गए और नई जनरेशन आ गई, तो अब उनको कहा गया दाखिल हो इस शहर के अंदर, व इज कुल अदखुलू हाजिहिल करिया, अब मूसा अलैहिस्सलाम भी फौत हो चुके हैं, यूशा बिन नून अब नए पैगंबर हैं, तो कहा गया आप दाखिल हो जाओ इस बस्ती में, किस बस्ती में, वो जो पैलेस्टाइन है बैतुल मकदस है, अब इनका जो अबाई अबाई जो शहर है, फकुलू मिनहा हैसु शिअतुम रगदन, और फिर खाओ इसमें जहां तुम चाहो बा फरागत खाओ, जो मर्जी खाओ पियो इसके अंदर रहो, वदखुलुल बाबा सुज्जदन, और इसके दरवाजे में दाखिल होना सजदा करते हुए, यानी झुकते हुए दाखिल होना, क्योंकि उस जमाने में हर आपको पता है ना शहरों के भी गेट्स होते थे, बड़ी बड़ी फसीलें होती थी, वो मतलब दीवारें उनकी होती थी ना चारों तरफ, और फिर उनके बड़े ह्यूज गेट्स होते थे, तो जब तुम गेट में दाखिल हो तो सजदा करते थे, यानी एज कॉन्करर जो है जब तुम फातिह बन के उसमें दाखिल होगे तो अकड़ के नहीं दाखिल होना, अल्लाह का हुक्म था कि तुमने सजदा करते हुए झुकते हुए जाना, यानी ये मतलब नहीं सजदा जमीन के ऊपर रख के सर को तो फिर चलना वो तो चल ही नहीं सकता ना इंसान, मतलब झुके हुए चलना, यानी एक आजी के साथ गर्दने गुरूर से ना अकड़ी हो झुकी हुई हो, रुकू की पोजीशन को भी सजदा ही कह देते हैं, ठीक है, इसीलिए हम जब बाज दफा सजदा करते हुए बस बिल्कुल ऐसे झुक जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देखें जब मक्का फतह किया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे एंटर हुए थे मक्का में, पता है आपको, ऊंटनी पे सवार थे और आपका सर मुबारक ऐसे झुका हुआ था कि उसके कजावे से लग रहा था, इतने झुके हुए थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजी देखें और अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे थे। तो सजदा करते हुए जाओ, वकुलू हित्वतुन, और कहते हुए जाओ बख्शिश दे दे बख्शिश दे दे, यानी माफी माफी, नगफिर लकुम खतायाकुम, हम बख्श देंगे तुम्हारी खताओं को, तुम ये कहते हुए जाओ। अब आप कहेंगे कौन से उन्होंने गुनाह किए थे, इंसान तो ऐसे ही खताकार है, तो तुमने इस तरह से करते हुए जाना ना, जो भी हमारी खताएं हैं माफ कर देना, अल्लाह माफ कर देना, अल्लाह माफ कर देगा, यानी इतनी हम्बलनेस के साथ एंटर होना। वसा नजीद उल मोहसिनीन, और हम जरूर देंगे एहसान करने वालों को। यहाँ पे मोहसिन किसको कहा जा रहा है? तो उसमें उनमें भी अच्छे लोग भी थे ना, बुरे भी थे अच्छे भी थे, तो फिर मोहसिन भी क्या माफी मांगे जी? यहां से पता चलता है कि ये ना कोई सोचे ओ मैं तो बड़ा नेक हूं, मुझे माफी मांगने की क्या जरूरत है, मैंने ऐसा क्या किया। सभी माफी मांगो, सभी तौबा इस्तगफार करते हुए, हित्तातुन, ये एक लफ्ज उनको कहा गया, आपने ये कहना है, हित्तातुन कहते हुए दाखिल हो। अच्छा, ये लफ्ज इनको पहले नहीं पता था, यानी ये इनको कहा गया पैगंबर के जरिए, जाहिर है उनको तो नहीं, डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन पैगंबर के जरिए उनको ये कहा गया कि हित्तातुन आपने कहना है। तो जो एहसान करने वाले होंगे, एहसान करने वाले कौन होते हैं? जो बुराई के बदले में भी भलाई करते हैं, वो लोग कि जो अल्लाह की इबादत ऐसे करते हैं जैसे अल्लाह को देख रहे हैं। अगर ऐसे ना कर सके तो ऐसे करते हैं जैसे अल्लाह उनको देख रहा है, एक्सेलेंस के लेवल पे इबादत करने वाले, तो हम उनको और ज्यादा देंगे। यानी क्या देंगे? और ज्यादा, यानी उनके और ज्यादा इनामात देंगे, अल्लाह ताला उनके और दर्जे बुलंद करेगा। बताएं तो माफ होंगी, लेकिन मोहसिनीन के लिए जब तौबा इस्तगफार करेंगे तो जो उनकी खताएं होंगी, खताएं तो हर एक की होती हैं। अब हम कहेंगे अच्छा अगर कोई मोहसिन है उसके तो इतने गुनाह नहीं है, जितने भी हैं अल्लाह वो भी माफ कर देगा, और जब वो और इस्तगफार करेगा ना तो अल्लाह उसके दर्जे बुलंद करेगा। जैसे नबी अलैहिस्सलाम, उनको तो तौबा की जरूरत नहीं थी, उनके तो कोई भी गुनाह नहीं थे, वो क्यों तौबा करते थे? उनके दर्जे बुलंद होते थे इससे, ठीक है? और वैसे भी कोई इंसान अल्लाह का हक नहीं अदा कर सकता, तो इंसान हमेशा तौबा करता रहे, अल्लाह तेरा हक तो कैसे अदा कर सकते, हम नहीं कर सकते। फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू, तो बदल डाला उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने जुल्म किया यानी ये इस कौम के जो जालिम थे, कौलन, इस कौल से, गैर अल्लज़ी क़ीला लहुम, बात को गैर एक और बात से, अल्लदी कीला लहुम जो उनको कही गई थी, उस बात के अलावा एक और कॉल से बात को बदल दिया। कैसे बदल दिया? हदीस में आता कि उन्होंने हित्तातुन की जगह कहना शुरू कर दिया हिंतातुन, हिंतातुन नून बीच में ऐड कर दिया, जिसका मतलब था गंदुम गंदुम। ये उन्होंने क्यों किया? हाँ क्यों किया ये उन्होंने? उन्होंने वो जब उनको पैगंबर में बताया हित्तातुन, तो उन्होंने आगे से मजाक उड़ाया, हित्तातुन हित्तातुन ये क्या चीज होती है, हित्तातुन ऐसे हमें कह रहे हो हमें जलील करने के लिए, हित्तातुन हित्तातुन हम क्यों कहें हित्तातुन, हम तो जैसे जाएंगे हमारी मर्जी होगी हम वैसे जाएंगे और वह वो ही कहेंगे। तो ना झुक के गए बल्कि घिसट घिसट के जाने शुरू हो गए, और हित्तातुन की जगह हिंतातुन हिंतातुन शुरू कर दिया। एक चीज होती है ना कि जैसे आप किसी को बताओ कोई सही चीज तो कहते हैं लो ये हमने कभी आज तक सुनी नहीं, ना हमारे माँ बाप ने कभी हमें ये हुआ, ना हमारे खानदानों में कभी ये बात हुई, तो ये क्या आपने नई बात ही बता दी? चले वो उस बात का मजाक उड़ाना शुरू कर देते, ये नहीं सोचते कि हम तहकीक तो करके देखें, हो सकता है हमारे पास इल्म ना हो और ऐसी बात ही हो, लेकिन पैगंबर आके उनको ये बात बता रहे हैं कि अल्लाह ताला का ये हुक्म है, उसको मजाक में उड़ा रहे हैं, ये क्या बात हुई? हित्ता तो उनका है, हम नहीं कहते ये। तो और कौल कौलन बात को, गैर अल्लज़ी कीला ना जो उनसे कही गई थी उसके अलावा बात से, फअंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज़्ज़म मिनस्समाए, इस बात की वजह से हमने नाजिल किया इन पर जिन्होंने जुल्म किया था इनमें से, जिन्होंने इस तरह से हरकत की थी, रिज़्ज़म मिनस्समाए, रिज़्ज़ आसमान से, ये रिज़्ज़ क्या था, ये क्या अजाब था इनके लिए? बाज़ तफासीर में लिखा हुआ है कि ताउन की जो बीमारी थी वो प्लेग की बीमारी इनके ऊपर आ गई थी, और बस जगह पे कि और कोई अजाब होगा जो अल्लाह की तरफ से आया, कोई वबा फूट गई, कोई और ऐसा हो गया। क्यों? बीमा कानू यफसुकून, इसलिए नहीं कि वो नया शहर था तो उसमें कोई उनको जर्म्स लग गए थे, हम तो यही रीजंस ढूंढते हैं ना, ये रीजन नहीं था, रीजन क्या था? बीमा कानू यफसुकून, इस वजह से कि वो खुल्लम खुल्ला नाफरमानी, ढीठ होके शर्म हया भी नहीं थी कि आप क्या कर रहे हैं, ये क्या हम बोल रहे हैं, हम क्यों इस तरह से अल्लाह के हुक्मों का मजाक करने लगे, खुल्ले वो के बेशर्मी के साथ। अब यहां से हमें क्या सबक मिलता है? क्या आपको कुछ बात समझ आती है यहाँ पे कि क्या नहीं करना चाहिए? हमें कभी भी अल्लाह ताला नहीं, जो कुरान में, कुरान को तो खैर कोई कर ही नहीं सकता, मगर हदीस में भी उलमा कहते हैं इससे हमें सबक मिलता है, कभी भी हम वर्डिंग्स ना चेंज करें, कभी हम वर्डिंग्स ना चेंज करें, यानी हम ये भी नहीं कर सकते कि इससे सिमिलर वर्ड हम ले आए, वो भी ना करें, क्योंकि उसमें भी वो बात नहीं होगी। जैसे मसनून दुआएं हैं, अगर तो उनको वैसे ही रहने दें, वैसे ही पढ़ें, जरा से भी उसमें चेंजिंग ना करें, क्योंकि जो चीज भी हदीस में भी है वो भी अल्लाह की तरफ से आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, उन्होंने एक दुआ आपने उनको सिखाई तो उन्होंने उस दुआ में सिर्फ नबी की जगह रसूल कह दिया, बात तो एक ही है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नबी ही कहो जैसे मैंने तुम्हें सिखाया। इससे पता चलता है कि जरा भी नहीं आप चेंज कर सकते, तो जरा आगे पीछे नहीं करनी चाहिए। नंबर टू क्या बात है, बहुत अहम बात यहां से पता चलती है, आप लोग भी सोचा करें क्या समझ आता है। देखें, उनको सिर्फ एक अल्फाबेट, एक हर्फ है ना, एक हर्फ उन्होंने ऐड किया था, उस पे उनको सजा मिली, इसलिए कि उन्होंने नहीं समझा कि ये हमारे लिए सही है जो अल्लाह की तरफ से है, बस हम अपनी तरफ से कुछ करेंगे जो हमारी मर्जी है। तो अगर एक हर्फ बढ़ाने से उनको सजा मिली, तो सोचें जो दीन में नई नई चीजें इजाद कर लेते हैं, नए नए काम इजाद कर लेते हैं, एक लेटर बढ़ाने पे ये सजा है, तो उनके लिए कितनी बड़ी सजा होगी कि दीन में कोई चीज नहीं है, दीन में नई नई चीजें बनाए, क्या वो काफी नहीं है जो अल्लाह ने उतार दिया? क्या दीन मुकम्मल नहीं हो चुका, इनकम्प्लीट था, जो अब हमें जरूरत पड़ गई है कि हम इसके अंदर नई चीजें जो डालेंगे, ये बहुत अच्छी चीज है, चलो ये दीन में दाखिल कर दो। तो जो अल्लाह का दीन जैसा है उसको वैसे ही रहने देना चाहिए, उसमें कुछ अपनी तरफ से इजाफे ना करो, कोई चीजें बिदात इजाद ना करो और बिदात पे ना चलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी इस दीन में कोई नई चीज इजाद करेगा तो वो मरदूद है, यानी रिजेक्टेड है वो चीज। अब आप उनकी तरफ देख लें कि उन्होंने क्या इजाद किया और आज कितनी इजादें हो रही हैं, और उनको भी नेकी समझा जाता है और कोई नहीं सोचते कि ये कोई गुनाह की बात है। तो शरीयत में चेंजेस करना, चाहे वो छोटी सी चीज हो, कहते हैं इससे फर्क क्या पड़ता है, फौरन सवाल क्या करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है भाई, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि आपने काफी नहीं समझा अपने लिए अल्लाह के दीन को जो आ चुका है, आपने कहा मैं खुद कुछ और कर लेती हूं यहां, तो फर्क तो पड़ा ना। अल्लाह को पता नहीं था नाउज़ बिल्ला कि ये चीज नाजिल करनी है, ये चीज भेजनी है, जो हम अपनी तरफ से नई नई चीजें ईजाद कर रहे हैं। तो इसलिए नई चीजें ईजाद करना, नए काम ईजाद करना, ये सख्त गुनाह की बात है, इसको बिदत कहते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए, सिर्फ कुरान और सुन्नत को फॉलो करें। बहुत सारे सबक हैं, खैर इंशाल्लाह ताला इन्हीं बातों पर भी हम गौर फिक्र कर लें और इनको बार बार पढ़ें आयात को, और देखें कि हमारे लिए और कौन सी बातें हैं जो हम अपनी अमली जिंदगी में ला सकते हैं और किन चीजों से हमें परहेज करना है। तो अमल की बातें आप एक और तरफ लिखा करें, ताकि या उसको हाईलाइट करा करें कि अमल की बातें ऊपर हेडिंग दें और नीचे उसके पॉइंट्स में लिखें, ताकि सब गड़मट ना हो जाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हमने जो पढ़ा है उसके मुताबिक हम अमल भी कर सकें, और जो बातें पिछली कौमों में थी जिसकी वजह से वो अताब का शिकार हुए, अल्लाह ताला उन सब से हमें महफूज रखे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुन।
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون